मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 27 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग फिलहाल विचारों नामक विषय पर विचार कर रहे हैं और पिछले कई एपिसोड से मैं इसी बिंदु को अलग अलग तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं और उसी कोशिश का यह अगला पड़ाव है। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण वक्तव्य के ऊपर जो मुझे बहुत ज्यादा अपीलिंग वक्तव्य लगा, और यह वक्तव्य है अलका सरावगी जी का। दरअसल फ्रेंड्स, हुआ ये कि अलका सरावगी जी अभी भोपाल आई थी और भोपाल के भारत भवन में उन्हें अपनी रचना का पाठ करना था। अलका सरावगी जी के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि वो फिलहाल हिंदी की बहुत जानी मानी प्रसिद्ध और लोकप्रिय लेखिका हैं, कहानियां और उपन्यास के संदर्भ में, और उन्होंने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं। आप कलकत्ता में रहती हैं, उनका रचना पाठ था और रचना पाठ सुनने हम लोग गए थे और भारत भवन में यह पाठ था। भारत भवन की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो स्टूडेंट हमारे यहां क्लास के लिए आते हैं, जहां क्लासेज लगती हैं वहां से भारत भवन बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, तो शायद उन स्टूडेंट्स के दिमाग में भारत भवन की तस्वीर डेफिनेटली होगी। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपनी रचना का पाठ किया। दरअसल वो एक उपन्यास लिख रही हैं और उस उपन्यास के कुछ अंश जगह जगह से लेकर के उन्होंने पढ़ करके सुनाए। और मित्रों, सबसे बड़ी बात तो यह कि उन्होंने इतने खूबसूरत अंदाज में वह पाठ किया कि मैंने इतने लोगों की रचनाएं बिल्कुल उन्हीं के मुंह से सुनी हैं, लेकिन इतने खूबसूरत तरीके से मैंने अभी तक नहीं सुना। वो बोल क्या रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे ध्वनियों का एक झरना बह रहा हो और झरना भी बड़े धीरे 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 मंद गति से प्रवाहित हो रहा हो। मतलब बहुत ही आनंददायक रचना पाठ। उस रचना पाठ के दौरान वो एक स्टेटमेंट देती हैं। दरअसल उसमें दो, एक नायिका है उसकी, उसका नाम है गाथा, और उसके जो नायक हैं वो है मिस्टर प्रमित सान्याल। उन दोनों के बीच संवाद होता है और ये संवाद आजकल की जो टेक्निक आ गई है ईमेल के जरिए होता है। एक दूसरे से वो लगातार बातचीत करते रहते हैं और इसी पैटर्न पर वह उपन्यास लिखा गया है। उस संवाद में एक वाक्य आया है, उस वाक्य को आप ध्यान से सुने, हालांकि सुनने पर ही आपको बहुत ही सामान्य सा वाक्य लगेगा और कुछ अटपटा भी लगेगा, लेकिन जब आप इस पर विचार करेंगे तो आपको यही वाक्य एक अद्भुत किस्म की विलक्षणता के अनुभव से भर देगा। वाक्य था, केवल उसमें 6 शब्द थे, व्यक्ति खुद को जन्म देता है, व्यक्ति खुद को जन्म देता है। अब आप देखिए कि अटपटापन है इसमें, व्यक्ति खुद को कैसे जन्म दे सकता है। मुझे मेरे माता पिता ने जन्म दिया है, उन्होंने पाला पोसा है, मैं कैसे अपने आप को जन्म दे सकता हूं। हां, मैं अपने पुत्र और पुत्री को जन्म दे सकता हूं, लेकिन खुद को जन्म देना, ये बात समझ में नहीं आती है। और मित्रों, यही तो साहित्य का सौंदर्य है। और क्या है कि अपनी बात को आप कितने, एक तो खूबसूरत अंदाज से रख पा रहे हैं और दूसरा ये है कि न केवल खूबसूरत अंदाज से ही रख पा रहे हैं बल्कि कौन सी नई बात कह पा रहे हैं। अब इसी को आधार बनाकर आज विचारों के संदर्भ में मैं आपसे अब कुछ अपने थॉट्स शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, यहां जो उन्होंने कहा जन्म, व्यक्ति खुद को जन्म देता है, तो यहां आपको जन्म को समझना पड़ेगा। जन्म, जन्म देने का मतलब क्या है। देखिए, जन्म एक तो हमारी जैविक स्थिति है, मतलब मैं जन्मा हूं, आप जन्मे हैं, हम सब कहीं ना कहीं कभी न कभी जन्मे हैं, राइट। हमारा जन्म हुआ है और डेफिनेटली तो हमारे जो जैविक पिता और माता हैं उन्होंने हमें जन्म दिया है, ये पहला जन्म हुआ। लेकिन क्या यही सब कुछ है, उन्होंने हमारे शरीर को बना दिया, पाल पोस कर बड़ा कर दिया, यह हमारा अस्तित्व है, लेकिन हम बनाते इसे स्वयं ही हैं। नो डाउट कि हमारा जो बाहरी वातावरण है बनाने में इसे सहयोग करता है, और जब तक हम अबोध होते हैं, अनजाने होते हैं, सीख रहे होते हैं चीजों को, समझ रहे होते हैं चीजों को, वहां तक तो हमारा मन, हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से ग्रहणशील है। यानी कि मैं एक भिक्षा का पात्र अपने हाथों में लेकर के समाज के सामने खड़ा हूं, परिवार के सामने खड़ा हूं, अपने शैक्षणिक संस्थान स्कूल कॉलेज में खड़ा हूं, और सबसे कह रहा हूं कि आप सब मुझे दीजिए, मेरे इस भिक्षा पात्र में आप सब ज्ञान डालते चले जाइए, और वहां थोड़ा बहुत जो मुझे पसंद नहीं आता या जिसमें मुझे भ्रम होता है, मैं उनसे प्रश्न भी पूछता हूं कि आप मेरे इस जिज्ञासा का समाधान कर दीजिए, और वो करने की कोशिश करते हैं। तो यहां मैं केवल एक ग्रहण करने वाला भिक्षुक मात्र हूं, यानी कि ज्ञान का भिखारी हूं। लेकिन जब मेरे ये भिक्षा का दौर पूरा हो जाता है, राइट, हालांकि देखिए ज्ञान का दौर कभी पूरा नहीं होता, वो तो हम आखिरी सांस तक स्टूडेंट बने रहते हैं, और दुर्भाग्य है कि हम बन नहीं पाते हैं, लेकिन बने रहना चाहिए। जीवन के अंतिम सांस तक हम कुछ न कुछ सीखते रहें, क्योंकि सीखने का मतलब है स्टूडेंट बने रहना, और स्टूडेंट बने रहने का मतलब है हमेशा युवा रहने के बोध से भरे रहना। तो युवा मैं हूं, इससे बड़ी और सुखद अनुभूति क्या हो सकती है। लेकिन चलिए, फिर भी जब हमारी औपचारिक शिक्षा खत्म हो जाती है, फिर हमारे जन्म का एक दूसरा चरण शुरू होता है। समाज ने जो भी हमें बनाकर देना था हमें बना दिया, उसने समाज को हमें सौंप दिया। लेकिन मित्रों, अब मेरे दायित्व की शुरुआत होती है कि मैं कैसे अपने आप को बनाता हूं, और मेरा ये जो बनना और बिगड़ना होगा ये पूरी तरह से 100% मेरे अपने विचारों पर आधारित होगा। मित्रों, यहां मैं जो विचार की बात कह रहा हूं, आप कतई मत समझिएगा कि मैं भावनाओं को बिल्कुल किनारे करके चल रहा हूं, नॉट एट ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता, उस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम यहां विचारों की बात कर रहे हैं, तो मुझे खासकर अपनी बातों को वहीं तक केंद्रित रखना होगा। अब सवाल यह है कि मैं किन विचारों को स्वीकार करता हूं, मतलब मुझे, मेरे सामने इतने सारे विचार आए, तरह तरह के विचार मुझे परोसे गए, हर विषय के विचार परोसे गए, तो इनमें से मैंने किसे ग्रहण किया। तो जो मेरी अपनी प्रकृति है, जिसे मैंने इससे पहले कहा था, जो मेरा अपना मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से मैंने चीजों को ग्रहण किया, उसमें काट छांट की, अपने प्रश्नों के समाधान ढूंढे, और उसके बाद जो मुझे ठीक लगा, ठीक जचा, उसे मैंने स्वीकार कर लिया। और जिन विचारों को भी मैंने स्वीकार कर लिया, उसी तरह का मैं बन गया। तो जो मैं अब बना हूं, यह मेरा पुनर्जन्म हुआ, यह इनफैक्ट मेरा पुनर्जन्म हुआ। तो एक तो मेरी एक फिजिकल आइडेंटिटी है, शरीर के रूप में मेरा अस्तित्व है, और नो डाउट इस अस्तित्व का पूरा श्रेय माता पिता को है। जब यह शरीर अस्तित्व में आ गया, फिर यह पल करके बड़ा होता है, इसका भी श्रेय पूरी तरह से समाज को है और माता पिता को है। लेकिन अब जो मैं बन रहा हूं, इसका पूरा का पूरा श्रेय मुझे खुद को है कि मैं बन क्या रहा हूं। दोस्तों, हमारे यहां जो अष्टावक्र हुए हैं, अष्टावक्र ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, जो बहुत ही महान चिंतक हुए हैं। एक तो आप गीता सुनते हैं, कृष्ण की गीता होती है, दूसरी अष्टावक्र की गीता होती है, जो उन्होंने राजा जनक को सुनाई थी। राजा जनक जो अपने आप में इतने बड़े फिलोसोफर थे, राजा होने के साथ साथ, अष्टावक्र ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि 40 वर्ष की उम्र के बाद आदमी का जो चेहरा होता है, उसके लिए वह खुद जिम्मेदार होता है। अब आप देखिए कि यहां क्या बात कह रहे हैं कि 40 वर्ष से पहले जो आपका चेहरा था, वो चेहरा था जो मां बाप ने आपको जन्म से दिया हुआ था, लेकिन अब जो आपका चेहरा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कैसे हो सकता है, मैं अपने चेहरे में कोई सर्जरी नहीं करा रहा हूं, कोई बदलाव नहीं करा रहा हूं, तो फिर मैं कैसे जिम्मेदार हूं? यस, अब चेहरे का रंग रूप से कोई मतलब नहीं है, अब चेहरे की सुंदरता से भी कोई मतलब नहीं है, अब जो मतलब है वो चेहरे के प्रभाव से है, कि आपके चेहरे का दूसरों पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये प्रभाव कहां से आएगा। मित्रों, यही प्रभाव है वह जो विचारों से आता है, विचारों से प्रकाशित होता है। आप यूं कह लीजिए कि एक बल्ब है, लगा हुआ है, बिजली उसमें नहीं आ रही है, बल्ब चाहे कितना भी सुंदर हो अर्थहीन है, लेकिन जैसे ही आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं वैसे ही बल्ब प्रकाशित होने लगता है और अंधेरे से भरा हुआ कमरा प्रकाश से भर जाता है। विचार उसी का काम करते हैं कि जिस तरह के हमारे विचार होते हैं उन विचारों का प्रकाश, उन विचारों की दीप्ति हमारे चेहरे पर दिखाई देती है और जिस तरह के हमारे विचार होते हैं उसी तरह से हमारे जीवन का स्वरूप बनता है और आगे बनता चला जाता है। इसे ही अलका सरावगी जी ने शायद कहा था, जो मेरी अपनी व्याख्या है, इस रूप में कि व्यक्ति खुद को जन्म देता है। तो आप इमेजिन करके देखिए मित्रों, इस पर विचार करके देखिए कि जो हमारा पुनर्जन्म होता है, और ये होता ही है, हमारे हाथ में नहीं है, होगा ही ये, वो केवल विचारों के आधार पर होता है और इससे आप विचारों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।